हम भजन करने के कह करके और वहां से वो हट गए, खिसक गए, खिसक करके चले गए। इतने में कुछ दिनों के बाद में धीरे धीरे भजन करते करते उनको कुछ ज्ञान होने लगा। देखा था कि जंगल में आग लग गई, चारों तरफ निकलने का कहीं कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं है, उन्हें मरना तो है, अब मैं कहां जाऊं। बस चुपचाप भगवान का नाम स्मरण करके और निश्चेष्ट होकर के बैठ गए। गंधारी भी कहीं तस मस नहीं, कुंती भी वहीं पर रही, और आग आई और उस आग में जल करके खत्म हो गए। किंतु चित्ते चूंकि अपना चित्त भगवान में लगाया था, आत्मा को तो आग जलाती नहीं, शरीर को जला दिया। वो तो जलना ही था, किसी न किसी तरह से उनके परिवार वाले जलाते, भीम जलाता या कोई, तो वो भगवान के कृपा से उस जंगल में ही अपने शरीर को छोड़ वहां से भागने की चेष्टा नहीं। उसी प्रकार से ये आग लगी हुई है भाई, ये विश्व में हम उसके अंदर पड़े हुए हैं, इसमें भी निश्चिंत होकर के भगवान का भजन कर। यदि बिलबिलाते रह जाएंगे तो भगवान का भजन नहीं होगा, इसलिए दुख करने के लिए चेष्टा मत करो या आपको हटा दे। उस समय में दुख वो चाहता तो आग को हटा देता या बुझा देता, इसलिए ये संसार की आग बुझने वाली नहीं है, कभी नहीं बुझेगी, बुझेगी तो भगवान के नाम से ही बुझेगी। इस चीज को समझ रखो, आग लगी हुई है ये त्रिताप, इसमें भगवान के भजन से ही ऐसा। यदि साधारण व्यक्ति को भी इतना कष्ट से इतना कठोर तपस्या करना पड़ता है तो जन्म से पार होकर के भगवान को प्रेम पाने के लिए हंस करके जीवन गवा देने से ही भगवान मिल जाएंगे, इतना सहज भगवान का मिलना नहीं है। ये जो स्थिति बतलाया है बहुत उन्नत स्थिति है, संसार का तो 70-80-90 वर्ष की उम्र तक भोग तो लिया, देखो तो ये संसार क्या है, मिला कुछ सुख, कुछ चीज मिली, मिली मृग मरीचिका, मृग मरीचिका किसको कहते हैं, ये कड़ी धूप में मरुभूमि में हिरण प्यासा रहता है, पानी खोजता है, पानी कहीं नहीं मिलता। उस समय में वो देखता है कि यहाँ तो पानी का समुद्र लहरा रहा है, गर्मी के वजह से हवाएं ऐसे तरंग जैसी उठती हैं, और देख करके होता है ये पासी में पानी है, दौड़ता है आगे जाने पर और बालू में भसता चला जाता है और वो तरंग और दूर दिखाई देती है। करते 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 कुछ देरों के बाद में प्राण छटपट करता है और वो गिर जाता है गर्म बालू में और एकदम सिद्ध हो जाता है और वहीं पर प्राण को छोड़ देता है। इसलिए समय रहते हुए सचेत होना चाहिए और भगवान के लिए कष्ट से भी आराधना उनकी होनी चाहिए। यदि कष्ट से घबरा करके छोड़ देंगे और दिन रात आराम के साथ मनाने की चेष्टा करेंगे भाई, ऐसे आराधना नहीं है। इसलिए गोपियों के कितने विरह के बाद में, तर्पण के बाद में उनको दर्शन दिया, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहां पर कहते हैं तासामा विभूत सौरी, उन गोपियों को देखा जब विरह से तड़पती हुई हमारे नामों का कीर्तन कर रही हैं, हमारे महिमा का गान कर रही हैं, भगवान से रहा नहीं गया, फिर वो यहाँ पर उपस्थित हो गए। कैसे, यहाँ पर उनको सौर्य कहा गया, सौर्य माने सूर्यवंश का, किस लिए, जैसे क्षत्रिय लोग बड़े सहिष्णु होते हैं, कैसे युद्ध में हाथ भी कट जाए, पैर कट जाए, कहीं तलवार लग जाए तो युद्ध से मुख मोड़ेंगे और उत्साह के साथ में लड़ते हैं। वृत्तासुर का वो कट गया ना, क्या हाथ काट दिया, ये हाथ काट दिया, ये सब काट दिया है? तो केवल मुख फाड़ करके उनके तरफ में दौड़ रहे, युद्ध से मुख नहीं मोड़ा, और उस समय भगवान का स्मरण करते हैं। ऐसा होना चाहिए सहिष्णु। तो कहते हैं कि कृष्ण यहाँ पर क्षत्रिय वंश के हैं, सहिष्णु हैं। तात्पर्य क्या?
चित्तौड़गढ़ में सुना जाता है कि बीरबल जो था सेनापति, तो वो लड़ते लड़ते ऊपर चित्तौड़गढ़ किला से और नीचे सात सीढ़ी नीचे आ गए, मतलब सात मील लंबी है भूकंप से। तो जितने नीचे आ गए फिर उसका सिर काट के और हाथ से झूठे करते हुए मते के नीचे आ गए।
ऐसा हो सकता
क्या? सही है,
सही है। वो महाभारत में ऐसा वर्णन किया, बहुत से लोग युद्ध कर रहे हैं सिर काट दिया और ऐसे ही वो सिर तो गिर गया और हाथ में तलवार लेकर के दौड़ रहा है। एकदम दौड़ करके गया कुछ देर के बाद में, तो और उसका मुख कैसा ऐसा के ऐसा किए गए, वो अलग रुन्न मुंड गिर गया। ऐसे सब उदाहरण है, उसमें आविष्ट था ना, इसलिए ऐसा हो सकता है। तो वो कह रहे हैं सौरे आप गोप नहीं हैं, मृदु स्वभाव के, कोमल स्वभाव, बड़े कठिन स्वभाव के हैं। कौन कह रहा है? नहीं, सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं। उनको थोड़ा सा उन पर रोष हो गया, या आप ऐसे कठोर हैं जो गोपियों को इतना कष्ट दिया। आप निश्चित में नंद नंदन, यशोदा नंदन, गोप नंदन नहीं हैं, आप जरूर क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय कैसे होते हैं? एक क्षत्रिय बालक अपने को छिपा करके परशुराम के पास में गया, जनेऊ लगा लिया। किशोर बालक, बड़ा देखने में सुंदर, वो कौन था?
कर्ण।
कर्ण कितना सुंदर होगा, कुंती का पुत्र है ना और सूर्य का उधर से पुत्र, बहुत ही सुंदर तेजस्वी था। वो ब्राह्मण बालक जैसा जनेऊ डाल लिया, उनके पास में गया। क्यों गया? उनको शस्त्र शिक्षा लेनी, अर्जुन को नीचे दिखाना है, इसलिए वो गया। परशुराम जी की प्रतिज्ञा थी कि मैं किसी भी क्षत्रिय बालक को शिक्षा नहीं दूंगा, मैं ब्राह्मण बालकों को ही शिक्षा दूंगा। तो उसने देखा कि ये ब्राह्मण तो हूँ नहीं, ये शिक्षा नहीं देंगे, इसलिए छल बहाना करके उसने वो गया और जा करके कहा उनके चरणों में कि मैं ब्राह्मण बालक हूँ और हमको आप धनुर्वेद की शिक्षा दीजिए, वेदों की शिक्षा दीजिए। मैं सचमुच में है तो ब्राह्मण का लड़का है तो आता हाँ, और कुछ गोत्र पूछा तो उसने गोत्र बतला दिए झूठ मूठ का, माता पिता का नाम भी कुछ भूल से बतला दिया दूसरे तरफ में, और तब उन्होंने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। ब्राह्मण लोग सरल होते हैं, वो दूसरों की बात पर विश्वास कर लिया। विश्वास करने के बाद में उसको शिक्षा देने लगे। कुछ दिन हो गए, कुछ दिन मैंने हो गया कि पूर्ण उसको शिक्षा दे दी अस्त्र शस्त्रों देने के बाद में कुछ ताड़ गए मैंने
समझ गए कुछ।
परीक्षा लेने के लिए सोची जा अच्छा ये हमसे छल करता है, मैं भगवत अवतार हूँ ना, और सुनाम जी भगवत अवतार है, सत्यावेश अवतार, इसलिए समझ गए। और उन्होंने क्या किया, उसकी गोदी में सिर रख करके और सो गए, जान बूझ करके सो गए। जब सो गए तो एक वज्र की लाव वो निकला और निकल करके जिसके जंघे पर पैर सिर रख करके सोए थे, पास ही में वो वज्र कीट आकर के और काटने लगा। यदि पैर हिलाते हैं तो गुरुजी उठ जाएंगे, इसलिए मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, गुरुजी को नित से नहीं उठने दूंगा, ये उसका भाव। इसलिए वज्र कीट काटने लगा और रक्त निकलने लगा, और निकलते निकलते वो इस पार से उस पार निकल गया, किंतु उसने अपना सिर अपना पैर नहीं हिलाया। रक्त से उनका सिर उनके रक्त में लगा और लगते ही अरे ये क्या, चौंक करके उठे, देखा जो लाल एकदम भरा पड़ा। जी कहाँ से रक्त आया? तो देखा जैसे गुरुजी एक कीड़ा यहाँ पर काट करके उधर निकल। तू कौन है बतलाओ तो? उनको तो सहानुभूति होनी चाहिए, शिष्य के काट करके निकल गया और मेरी सेवा के लिए पैर नहीं हिलाया, तो वो और बिगड़ गए। तू बोल सच सच बतला, तू ब्राह्मण बालक नहीं है, ब्राह्मण इतना सहिष्णु नहीं होता है, उसको इतना धैर्य नहीं होता, तुम जरूर क्षत्रिय बालक। आप तो वो सहने से गुरु जी ने तो जान लिया, अभी बतला में तो अभी तुमको अभी संपाद दूंगा, तुम्हारा सर्वनाश हो जाए, बतला जल्दी। तो उसने कहा कि मैं उनका मैं ब्राह्मण पुत्र नहीं हूँ, मैं
क्षत्रिय
नहीं, वो अधिरथ सूत का पुत्र हूँ, सूत पुत्र हूँ। तो तुम हमसे ऐसा झूठ क्यों बोला? क्योंकि आप शिक्षा नहीं देते इसलिए, और थर थर कांपने लगा। दे जाओ, अधिक तक कुछ नहीं कहूंगा, किंतु यही अभी संपात करता हूँ कि मेरी सिखाई में विद्याएं तुमको जब तक याद रहेगी, जब तक तुम कष्ट में नहीं पड़ेगा। जिस समय ऐसा कोई कष्ट घोर आएगा, उस समय हमारी जितनी भी विद्याएं सब भूल जाएगा, और फिर विधियों के हाथ से तुम आ जाएगा, क्योंकि हम जाने साथ ही तुम छल किया। तो इस तरह से यहाँ तात्पर्य ये है कि क्षत्रिय होने के नाते छेद कर दिया तो भी, तो कृष्ण क्षत्रिय हो तुम, इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं तुम सुर वंश का है, इसलिए तुम इतने कठोर हो। गोपियां तड़फड़ाती रही, रोती रही, बन बन भटकती रही, पागल हो गई।
और सारी बातें जो होगी सब सौरी के लिए है,
ये सौरी के लिए कहा, उलाहना दे रहे हैं, गोपियों के पक्ष लेकर के करें। वो सुख जी गोपियों के पक्षधारी थे, इसलिए कृष्ण को सुरवंशी कहा। स्मयमान मुखाम बुझा, सुखदेव जी हो मुस्कुराते हुए यहाँ पर प्रकट हो रहे हो, किंतु हो तुम क्षत्रिय। मुस्कुराते हुए क्यों? आंखें निगाह नीची करके वहां पर वो नीचे करके मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए कि गोपियों को हमने बड़ा कष्ट दिया, इसलिए लज्जित होकर के मुस्कुरा रहे। पीताम्बर धर सबली, वही पीताम्बर जो पहले पहन करके अंतर ध्यान हुए थे, वैसे ही पीताम्बर, और वही वनमाला जिनको गोपियों ने अपने हाथों से गुथ कर कृष्ण को पहनाई थी, जो यहाँ से यहाँ तक लंबी थी, उसी माला को। अर्थात मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो वही माला पहन करके यहाँ पर उपस्थित हूँ, जिस माला को तुमने पहनाया था ये दिखला रहे, किंतु जो कुछ अन्याय हुआ तुम लोग क्षमा करो। अपने भूल को त्रुटि को स्वीकार करते हुए मानो कृष्ण इस प्रकार से हंसते हुए लज्जित होकर के मनमथ मनमथ इस रूप में वहां पर प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? उस समय उनका सपचा करके लज्जित होकर के आना और हंसते हुए आना भी इतना सुंदर और मनोरम था कि साक्षात कामदेव भी वहां पर मोहित हो जाए, ऐसा सुंदर मनोहर हो। इसलिए साक्षात मनमत मनमत कृष्ण तो ऐसे ही सुंदर हैं, और भावपूर्वक जब तिरछी नजरों से लज्जित हो करके और गोपियों की तरफ में देख रहे हैं, तो उनका सौंदर्य और भी अधिक बढ़ गया। गोपियों ने कृष्ण को देखा, किसी ने किसी तरफ से देखा, किसी ने किस भाव से देखा, तरह तरह की गोपियों ने उनके तरफ तरफ से भावों की तरफ से उनको देखा। उस समय ये दिखला रही हैं कि कृष्ण के आने के बाद में कृष्ण ने ऐसे चाटुपूर्वक बातें की, चाटू माने होता है मनोहारी बातें की, चापलूसीपूर्वक बातें की, और ऐसे ढंग से बात की कि गोपियों का विरह कुछ शांत, वो संतुष्ट हो गए। विशेष करके कृष्ण ने जब ये कहा मैं तुम्हारा जीवन के लिए ऋणी बन गया, और उनका हाथों को हाथों में ले लिया, उनसे मिले, तब गोपियों को यह भय भी दूर हो गया जो भविष्य में फिर न चले जाए। इस तरह से यहाँ पर मिलन का जो आनंद है, गोपियों का जो प्रेम है, इसको दिख रहा है। इसलिए विरह के बाद में जो मिलन होता है उसे भक्तों को बहुत ही आनंद होता है, उसी को यहाँ पर दिखलाया है। और कह रहे हैं इतना बता, चिराद आशा मात्रम त्वयि दृशे अंत स्थिर धियो विधुर्य वासम मधुरम गभीरे मधुपुरे दधाना कई सोरे वैसी सखीतान गोकुलपते प्रपद्ये था स्तेशं परिचय वश्यम नयनयो। बतला रहे हैं गंभीर माधुर्यमय कृष्ण उस समय गंभीर हैं जमीले तो माधुर्यमय जितनी उनकी मधुरता थी वहां पर प्रकटित हुई। से ब्रज धाम है तथा तो जत स्थिर बुद्धिजन स्थिर आशा हृदय धरी तुम्हारो दर्शन करी बसी ऐसे सब सज्जन। गोपियां पर कह रही है कृष्ण के लिए ब्रज धाम में गोपियां आपकी आशा के लिए चिर दिनों से ये आशा लगाए बैठी हैं ये कब आपका दर्शन होगा। तुम्हारो कैशोर लीला हृदय वरण कैला एवे से सवार कृपा करी नयन गोचर हैया लीला कर जताइया यही मात्र निवेदन करें। गोपियां यही उनसे प्रार्थना करी हैं कृष्ण से कि तुम्हारी किशोर लीला को हम हृदय में धारण करके अभी तक जीवित हैं आपके दर्शनों के लिए अभी तक जीवित हैं इसलिए आप कृपा करके हमारे मुझे हमें दर्शन दे करके और हम लोगों के साथ में लीला करें वृंदावन में यही हम लोगों की विशेष निवेदन है प्रार्थना है। इसके बाद में फिर आग्रह के साथ में वो उनको कह रही है कृष्ण से मिलन होने के लिए प्रार्थना कर रही है। मथुरा मंडल नाग माने जैसे गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए आतुर हैं भक्तों को भी साधकों को भी ऐसे आतुर होकर के भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए तभी वो मिलते हैं बिना आतुर होने से वो मिलते नहीं। मथुरा मंडल माधु माधुरी मंडित साजे धन्य धन्य वृंदावन भूमि समस्त पृथ्वी में मथुरापुरी धन्य है। मथुरापुरी इसलिए धन्य है कि कृष्ण यहाँ पर प्रकट हुए और दूसरी बात उनकी लीला भूमि वृंदावन और जब ये गोकुल उनकी जो जन्मस्थली है सब मथुरा मंडल के अंतर्गत इसलिए मथुरा मंडल का भी प्राण है ये वृंदावन। इसलिए मथुरा मंडल माजे माधुरी मंडित साजे धन्य धन्य वृंदावन भूमि इस वृंदावन भूमि विशेष करके ये इसलिए धन्य है जहां पर पग पग में प्रत्येक रेणु में गोपियों की चरण धूलि मिश्रित है गोपियों के लिए यह वृंदावन भूमि धन्य है। कृष्ण की चरण धूलि तो द्वारका में भी है हस्तिनापुर में भी तो है कुरुक्षेत्र में भी तो है सब जगह जहां जहां कृष्ण गए थे वहां पर वो उज्जैनी इत्यादि में भी पढ़े लिखे थे तो वहां पर कृष्ण के चरणों की धूलि है किंतु उसको धन्य नहीं कह रहे हैं। धन्य कहाँ कह रहे हैं वृंदावन किस लिए कृष्ण के चरणों से नहीं कृष्ण को सबसे अधिक प्रेम करने वाली गोपियों की चरण धूलि वहाँ है गोपों की चरण धूलि है विशेष करके राधा जी की चरण धूलि है इसलिए यह वृंदावन भूमि परम धन्य है। कहे तो वह नित्य लीला इसमें वृंदावन में कृष्ण की ऐसी लीलाएं हुई हैं जो विश्व में कहीं नहीं हुई मथुरा में भी वो लीला नहीं हुई। मथुरा में उनकी जन्म लीला नहीं हुई कभी भी देवगे से झूठ बोले होंगे नहीं झूठ बोले यहाँ पर कोई बाल्य क्रीड़ा ही नहीं हुई यहाँ पर देवकी का भी स्तनपान भी नहीं कभी किया। गोकुल में जैसे उनकी मनोहारी लीलाएं हुई यहाँ पर लीलाएं नहीं हुई। वृंदावन में जो राष्ट्रस्थली जैसी है वो मथुरा द्वारका अयोध्या इत्यादि में उसको प्रकाश नहीं किया। यहाँ पर राज के अतिरिक्त भी और सब लीलाएं जो हुई हैं वृंदावन के बीच में राधा कुंड है गोवर्धन यहाँ पर जो लीलाएं हुई वो सब लीलाएं कहीं भी नहीं। इसलिए वृंदावन सबसे धन्य प्रदेश है। यहाँ पर लीलाएं उन्होंने प्रकाशित की। अत्यंत शक्ति थे कृष्ण सुनी, कृष्ण शक्ति थे कृष्ण कुमी अचिंत शक्ति थे कृष्ण कुमी। गोपी भावे मुग्ध मत जप तुमार श्रृंगार रत आमा आदि प्रणय निचये आमा सबेलाय पुनः क्रीड़ा कर अनुखन वंशी बाद्य ब्रजेन्द्र तनय। हे ब्रजेन्द्र तनय, आपने यहाँ पर गोपियों के भावों से मुग्ध होकर के, उनके वशीभूत होकर के आपने श्रृंगार रस की जितनी भी लीलाएं की हैं, अब पुनः उसको पाने के लिए हमारा मन तड़पड़ा रहा है, इसलिए पुनः वृंदावन में प्रकट होकर के उन लीलाओं को आप पुनः संपादन करें। इसके बाद में रथ जाता का प्रसंग वाला वो श्लोक बतला रहे हैं। गोपेश्च कृष्ण उपलब्ध चिराग अभिष्टम यत प्रेक्षणे दिशेषु पक्षकृतम पशपन्ति दीर्घी हृदिकृतम अलम परिरभ्य सर्वा तद्भाव मा पूरमपि नित्य जुजानति वा। इसकी हम कल चर्चा करेंगे, आज ही चर्चा कीर्तन करो विनाम परान हरे क्वदावलोकनम अंतरेण अनाथ बंधो करणैक सिंधु अहं तहं कथं नयामि। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी बिल्व मंगल जी का कृष्ण कर्णमित से ये श्लोक उद्धृत किया। यह बृहस्पतिचक यहाँ पर भी बिल्व मंगल जी चिंतामणि के यहाँ से चले हैं और कृष्ण की लड़कियाँ पकड़ करके ले जा रहे हैं अंधे बिल्व मंगल, और वो कृष्ण के विरह में तड़पड़ाते भी इसी श्लोक को बतला रहे हैं। साधक को ऐसे ही, साधक जब भगवत दर्शन के योग्य में जाता है तो ऐसे ही आता है, ऐसे ही भावनाएं, बिना ऐसी भावना के वो उसका दर्शन नहीं होता। अमुन्य धन्यानि दिनांतराणि हे दीन बंधो अनाथ बंधो करुणैक सिंधो हा हंत हंत कथम नयामि। दीन बंधु, संसार में दीन कौन व्यक्ति है? कृष्ण भक्ति जिसको नहीं है वही दीन है। जिसको भक्ति है, जिनके दर्शन नहीं मिले हैं, अपने को दीन समझ। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं बहुत दीन ही हूं, हे करुणा सागर किंतु आप कृपालु हैं, हे हरि आप ही बतलाइए, बिना के दर्शन के निशार दिन रात और अभागे घड़ी पल कैसे कैसे देते हो। बिल्वमंगल पूर्वत अपने भाव के अनुसार पुनः प्रार्थना करते हुए कहे। इसके पहले उन्होंने बतलाया है, हे देव हे दई हे भुवनई के बने, उसके बाद उसको कहा हे अनाथ बंधु मेरे जैसा और कोई अनाथ नहीं है। सचमुच में सोचे हम लोग तो हम लोगों जैसा कोई अनाथ नहीं है। एक क्रोध भी हम नहीं छोड़ सकते, एक मोह नहीं छोड़ सकते, विषयों के प्रति एक लालसा नहीं छोड़ सकते, कुछ भी नहीं छोड़ सकते। इतनी थोड़ी सी शक्ति नहीं, और की तो बात क्या, एक आलस्य नहीं छोड़ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे हम लोग असहाय हैं। कहाँ रूप सनातन का देखो विचार करो, सनातन गोस्वामी जी के रूप गोस्वामी का विचार करो, रघुनाथ दास गोस्वामी के विचार, और उनके पहले जो प्राचीन लोग हैं उनकी तो और भी बात देखो। प्राचीना नाम भजन अतुलम सुनमतंग दुष्करण, वो तो इतना दुष्कर भजन कठोर भजन करते थे। हम लोग कहते हैं महाराज जी एकादशी यही हमसे होती, महाराज जी कहते हैं मेरी भी नहीं होती। डॉक्टर ने कहा दिया कि एकादशी मत करेंगे, निर्जला फिर जला, निर्जला तो भूल जाइए। ऐसे असहाय शरीर स्वस्थ सब कुछ, कुछ भी नहीं कर सकते। प्रचीनानंद भजन अतुलम, एक दिन भोजन नहीं छोड़ना, एक दिन के लिए नहीं कह रहे। हिरण्यकश्यपु ने कितने दिन तक भोजन छोड़ा था, 60,000 वर्ष खाया नहीं, ध्यान लगा दिया एक साधारण चीज पाने के। ध्रुव जी ने देखो तो पहले महीने में उन्होंने 1 दिन अंतर की, 2 दिन अंतर से अन्न जल तो सब छोड़ दिया, सूखे पत्ते लेते थे, और उसको भी दूसरे महीने में ये पत्ता खाना भी छोड़ दिया, और तब पानी लेते थे 7 दिन के अंतर से या कितने दिन से, तीसरे महीने में वो पानी लेना भी छोड़ दिया। हवा लिया 2 बार, एक पक्ष में 1 बार, हवा खातर के ही जीवित रहे, प्राण है ना, और उसके बाद में अपने प्राण वायु को एकदम रोध कर दिया। सोना टोना तो सब कुछ हो गया खत्म, और ऐसा कठोर याद प्रभु से रहा नहीं गया, एकदम चल गया 5 या 6 महीने में। कोई ऐसे हैं हम लोग बिना पानी का रह जाए, निर्जला काशी भी नहीं रह सकते। 15 दिन 20 दिन 6 महीना तो छोड़ने की बात अलग रहे, भगवान इतने सस्ते नहीं है जो मिल जाए, इसलिए निराशा हो जाए, इतने असहाय, नींद नहीं छोड़ सकते, ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, मान अपमान भी सज्ज नहीं होता। क्या हो मान अपमान भी सज्जन, वो शायद जिसे मोबिल कहते हैं वो खत्म हो गया, देखते कीर्तन कर बताऊंगा। जब हम देखते हैं प्राचीन लोग कैसे कठे कैसे कैसे कठोर रूप से उन्होंने साधन करे, तब भगवान ने उनको दिया क्या, किसी को भोग दिया, किसी को मोक्ष दिया, किसी को पुत्र दिया, सनातन इत्यादि कैसा कठोर भजन किया, कोई अपने लिए कुटी कहीं नहीं बांधा, रसोई नहीं बनाई, लवण कैसा होता है ना रसा स्वाद के लिए कभी देखा नहीं, और लवण
साग को ही लगे
बस कुछ भी नहीं, जीवा पर नहीं दिया नमक, जे नमक कैसा होता, बिना नमक का खाया नहीं जाता, रस ही नहीं जाना दे रहा ऐसा, और सोना कैसा बतला है, कभी आध घड़ी थोड़ा सा
डेढ़
घंटा 1 घंटा कभी वो भी मना, सूखा हुआ चना चिबा लेते थे, इस तरह से भजन किया। अभी हाल में कुछ दिन पहले हमारे गौरकुशो दास महाराज, जगन्नाथ दास महाराज देख रहे हैं कैसे कैसे वैराग्य के साथ में त्याग से भजन किया। पाषाण की रेखा मिट सकती है किंतु इनके वैराग्य की रेखा नहीं। इतना कठोर साधन भजन किया दिन रात। हम लोग दो मिनट नहीं सीधा ऐसे बैठ नहीं सकते, सब समय आराम चाहिए, रेस्टफुल खाना चाहिए। आजकल आम का दिन है ना, सनातन गोस्वामी आम के दिन में जानते नहीं कि आम का मौसम आया कि गया। और हम लोगों का देखो तो ऐसे भजन होता है। इसे कहते प्राचीन नाम भजन दुष्कर्म श्रीमता नैराश्य ने जलती हृदय भक्ति ले सावस। तनिक भी भक्ति नहीं है जब विचार करेंगे। विश्वदृचि तबाकर्ण
विश्वदृचि मगहर तबाकर्ण कारुण्य
कारुण्य वीचि आशा बिंदु क्षिपन विदम
अंतरे हम
अंत सहित। कहते हैं बस एक चीज के लिए मैं आशा लेकर के अभी जीवित हूँ, आपकी करुणा की वर्षा हो रही है। कहीं भी कहीं एक बूंद या छिटक फुटक करके कहीं से कोई एक बिंदु का भी बिंदु मिल गया तो हमारा जीवन कृतार्थ हो गया। इसीलिए साधन भजन के द्वारा नहीं ये कारण है। कौन रघुनाथ दास कृष्ण इतना भजन करके कह रहे हैं तो हम लोग की स्थिति देखो तो। इसलिए हम सब विषय में असहाय, एक थोड़ा सा अपमान का कोई कारण हो जाएगा बस हो गया भजन। गुरु टूर रहे और वैष्णव रहे और भगवान भी रहे, इसलिए हम लोग बड़े असहाय हैं। कोई एक गंदी आदत नहीं छोड़ सकते, इतना सामर्थ्य नहीं है जो गंदी आदत छोड़। एक आदमी ने हमसे प्रतिज्ञा की, संकल्प किया, हमने कहा जो एक धूम्रपान छोड़ दो। अरे छोड़ दो, मैंने कहा जो अच्छा तो गले में एक माला तुलसी को दे दो, दे दो। दूसरे दिन उसके घर वाले जी महाराज वो कहता है कि प्राण जाने पर भी हमारा धूम्रपान नहीं छोड़ सकता। और क्या आदमी करेगा, कहने ठीक है धूम्रपान उसका चलता रहे। जब इतनी भी चीजें हम नहीं छोड़ सकते क्या छोड़ेंगे। इसलिए कहते हम सब समय असहाय जीने, इसलिए हम अनाथ हैं। वैष्णवों का संग जिनको है, हमारा जैसा नहीं। वैष्णवों का संग कैसा, जैसे रघुनाथ गोस्वामी उपगोस्वामी का संग करते, जैसे प्रभुपाद जी भक्ति विनोद ठाकुर का संग करते, ऐसा संग। कैसा संग, भक्ति विनोद ठाकुर जी का संग प्रभुपाद जी करते हैं। अपनी स्वतंत्रता एकदम नहीं होती, हम लोग गुरु जी का संग करते हैं किंतु अपनी स्वतंत्रता को ठीक रख करके गुरु जी का संग करते हैं, इसलिए उनका संग का प्रभाव हमारे ऊपर में नहीं होता। इसलिए हम लोग अनाथ हैं, रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए वह देश वह काल और सब कुछ जिसमें भगवत भाव का संबंध नहीं है वो बेकार का है, व्यर्थ है। बिल्व मंगल जी चलते 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 निराश हो गए हैं और निराश होकर के ये श्लोक कर रहे हैं, हे अनाथ बंधो मैं यदि विश्व में देखा जाए तो मेरे समान और कोई अनाथ नहीं है। जगाई मधाई है ना सनातन गोस्वामी, और विचार कीजिए पासी पास में जगाई मधाई, दोनों में अधिक पापी कौन है या दोनों में अधिक योग्य कौन है। सनातन प्रभु जी सोचनीय है न जगाई मधाई, जगाई बात है। फिर भी सनातन गोस्वामी कह रहे हैं जगाई मधाई से पुरुषेर की धैत्य मुई से लभिष्ट टट्टी से भी मोर नाम जेई लय तार पाप पाप है मोर नाम जेई सुने तार पुण्य फल। मेरा नाम जो सुनेगा सनातन उसका पुण्य सब खत्म हो जाएगा, मेरा नाम जो लेगा उसको पाप होगा। सनातन गोस्वामी कब कह रहे हैं, वृंदावन में आकर के कह रहे हैं या
राम की लीला में जब वहां पर पहुंचे
तब कह रहे हैं? मतलब तो ऐसे ही देखता है वो व्यक्ति कि मैं ही एकमात्र अनाथ हूँ और सब सनाथ हैं, तो वो ऐसा देखता है। जैसे श्रीमती राधिका जी कुलीन कन्या को देख रहे हैं, ये सनाथ है ना, किसको कुलीन कन्या को देख रहे हैं कि ये सनाथ है, क्यों? कृष्ण के चरणों के कुमकुम को उसने अपने शरीर में धारण कर लिया, मैं मर करके वही पुलिंदी होनी चाहती हूँ। पुलिंदी से कोटि गुण कोई गुण ही का संबंध है, कहाँ राधिका जी कहाँ पुलिंदी कन्या। ऐसे बिल्लू मंगल जी को भक्ति है किंतु जो चीज को चाहते हैं वो चीज नहीं है।
अच्छा, यहाँ पर जो ऐसे अधिकार की बात है ये तो निरपेक्ष अधिकारी वालों के लिए बात है कि यदि कोई व्यक्ति निरपेक्ष अधिकारी हो तब उनके लिए ये समस्त संभव है। अभी तक जिनको संसार में सापेक्ष है तो उनके लिए क्या करना चाहिए?
उनके लिए यही कथाओं को सुन करके तब ऐसा बनता है, यही कथाओं को सुने, बिना भगवान की कथाओं भक्तों की कथाओं को सुने और कनिष्ठ साधक को मध्यम साधक को भी इन्हीं बातों को सुनने से जित भगवान की कथाओं के अतिरिक्त और कोई नहीं। इसीलिए वो कह रहे हैं हे अनाथ बन, आप अनाथों के और साथ ही साथ में करुणा सागर हैं, हमारे जैसा दीनहीन विश्व ब्रह्मांड हो गए। इसे भक्त जो होता है वो देखता है कि मैं दीनहीन सब हूँ, यदि बिल्लू मंगल जी इतना दीनहीन बन गए, सनातन गोस्वामी इतना दीनहीन बन गए तो सचमुच हम लोगों के लिए क्या है, हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए? होता है इसे ऐसा होना चाहिए, नहीं होगा। ये चिंता किसको आएगी? जिसको प्रेम होगा। जिसको प्रेम नहीं होगा ना ऐसा तो दिनता भी ऐसी नहीं स्वभाव। इसलिए हे करुणा के एकमात्र सिंधु समुद्र, करुणा का सिंधु किस लिए कहा गया? कुआं में तो चारों तरफ से बंधाई होती है ना, उसमें जल लेना जरा मुश्किल है, और करुणा का सागर यदि उमड़ रहा है तो सबको एकदम नहला दे, जो जाएगा सब। हरे तद अवलोकनम अंतरेण, ये दिन और रात, ये घड़ी ये जाम, ये पल और क्षण समस्त अधन्य है, अमूल्य धन्य है। अमुन्य धन्य मैंने क्या, अमुनि अमुनि मैंने ये जो है ना, क्या दिन रात क्षण काल या देश में जो कुछ है ये सब सब अधन्य, जिससे कृष्ण का संबंध नहीं। अभी हम लोगों का कृष्ण से यदि संबंध नहीं है तो हम लोग भी ऐसे ही अधन्य है, हम लोगों का जीवन का कोई भी मूल्य नहीं। इसलिए कहते हैं, कैसे हैं, अमंगल स्वरूप। अमंगल स्वरूप माने नित्य दुखप्रद है, हम समझ रहे हैं इस चीज को दुखप्रद है किंतु निकलने की कोशिश में हम नहीं करते, और कोशिश करने पर भी वो होता नहीं और फंस से जाते हैं दलदल में। जो धन को प्राप्त करे वो धन्य। धन्य माने क्या है? धन्य है ना? एक धन से धन्य हो। धन माने होता है अर्थ। अर्थ माने क्या होता है? प्रयोजन। प्रयोजन माने क्या है? हमारे शरीर के लिए प्रयोजन है, हमारे मन के लिए प्रयोजन है, और एक हमारी आत्मा के लिए प्रयोजन है। यहाँ पर शरीर से प्रयोजन जितनी भी चीजें हैं वो हमारा अर्थ नहीं है, वो अर्थ नहीं। परमार्थ कौन है? जो आत्मा के लिए आवश्यक। आत्मा के लिए कृष्ण ही एकमात्र धन, उनकी भक्ति एकमात्र धन और प्रयोजन। तो इसलिए जो आपके भक्ति से धनी है वो धन्य है, और बाकी सब अमूल्य धन्यानी, सब कुछ अधन्य। यदि इस विषय को अनुभूति हो जाए ना, उसमें प्रतिष्ठित आदमी हो जाए तो उसी दिन भक्ति हो जाए। इसलिए समस्त भुवन में सभी समस्त भुवन के लोग निर्धन हैं, वही व्यक्ति धनी है जिसके अंदर में प्रेम का धन है।
कृष्ण प्रेम धन जैसे बड़ा धनी।
कृष्ण प्रेम जिन में नहीं है। अच्छा, कृष्ण बात को छोड़ दो, कृष्ण प्रेम, कृष्ण की भक्ति भी यदि है तो वो धन्य है। कृष्ण संबंधी यदि श्रद्धा भी उदित हो गया तो भी वो धन्य हो गया। इसलिए जिसको जी श्रद्धा है वो उससे तृप्त नहीं होगा। जो जिसको निष्ठा है वो भी तृप्त नहीं, जिसको भक्ति है वो भी तृप्त नहीं, और जिसको प्रेम है ना वो भी तृप्त नहीं। जिसको स्नेह हो गया उसे बढ़कर के प्रणय हो गया, अनुराग हो गया, और भी विवल होता चला जाता, तृप्त नहीं हो सकता। कि ऐसे ही नारद जी का वर है या भक्ति का ऐसा ही स्वभाव। इसलिए कहते हैं, राधिका जी कहती हैं कि ये हिरण धन्य है जो कि कृष्ण का बिना किसी बाधा का दर्शन करती है। हिरणों को धन्य नहीं कहा, हरणियों को धन्य कहा। जिसके हृदय में आपके चरण का नित्य विहार होता है वही लोग धन्य है, अन्यथा वो धन्य नहीं। और जिसके हृदय में प्रेम की डोरी से आप बंधे हुए, नित्य बंधे हुए, आप एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ते हैं, वही एकमात्र धन्य है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्य निवसत हृदय जेशांग श्री हरि भक्ति रेखा। जिसके हृदय में एकमात्र भक्ति है वही धनी है, जिसके हृदय में भक्ति नहीं है वो सबसे विश्व ब्रह्मांड में निर्धन है। देखिए ना, अभी हर्षद मेहता नाम का कोई व्यक्ति है ना, उसने कितना कितना हजार करोड़ की कितना की और खरब
5000 करोड़
पेट भरा उसका। ये पेट कभी नहीं भरेगा, वो भरेगा सनातन गोस्वामी के जैसे वैराग्य से ही भर सकता है, जब जरूरत भी नहीं है, कृष्ण प्रेम की जरूरत है। इसलिए उसकी आशा छोड़ो और भक्ति में आओ, तब तो जीवन हो जाएगा। कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं, बूढ़े लोग हमारे जैसे, जिनके लड़कों ने उनका सब ले लिया ना तो बड़े दुखी हैं। लड़का कहता है जी पिताजी घर में बैठ, इधर में मत आना, तुम घर में बैठो, खाने पीने के लिए हम दे देंगे। तो देखो तो हमारी सारा जीवन का कमाई ले और हमको घर में बैठा रहा है। ये सब को छोड़ दिया, एक उसका नाव पर ईशान लेकर के आ रहा था। अच्छा बेटा और तुम्हारे पास में कुछ है? तो प्रभु एक और।
अच्छा
बड़ी मुश्किल से तुम्हारे साथ को तो मैंने हटा दिया और तू अभी एक ले आ रहा, वही हमारे और तुम्हारे प्राण का घातक होगा, उसी के लिए दूसरा कोई आएगा और गर्दन काट करके अभी तक नहीं छोड़ सका मैं। भैया प्रभु आपकी सेवा के लिए रखा, तो तू सेवा नहीं है तो तुम्हारा और हमारा इसके तो प्राण चले जाएंगे, तुम इसको लेकर के चले जाओ। रोता रह गया कि तू नहीं दिया, क्यों छोड़ नहीं सकता ये ईशान, क्योंकि भक्ति नहीं है ऐसी, अभी काने से भी नहीं छोड़ेगा। वैसे ही जिनको वैराग्य नहीं है उनको मठ में आकर के हम कहें जब वैराग्य सीखो तो सीखेंगे, सीखना पड़ा भरी, वो लोग क्या करेंगे कुछ दिन तक ठीक रहेंगे, इसके बाद उसका घड़ी लेकर के रख लें, उसका कपड़ा इधर का उधर लेंगे, उसका कुछ ले लेंगे। संत लोग कहते हैं कि ये बेटा तो मानेंगे नहीं, छोड़ो अपना समय बर्बाद, इसलिए तुम लोग भी खूब सोच समझ करके ऐसे रहना। वैराग्य के लिए भगवान का भजन करना, यदि भगवान का सचमुच में भजन करना है, इसलिए विश्व ब्रह्मांड में वही निर्धन है जिसको भक्ति नहीं है, और जिसको भक्ति हो गई वह संसार में विश्व में सबसे बड़ा धनी है, उनका जीवन धन्य है। हरि रपि निज लोकम सर्वथा अतो विहाय प्रसिद्ध हेतु।